Hey guys, if you want to get into podcasting as well, then Anchor is all you need. It allows you to record and edit your podcast and then helps you to upload it to platforms like Spotify, Apple Music, Breaker, Radio Public, Pocket Cast as well. This allows you to earn money while you don't pay anything because Anchor is completely free. So what's stopping you? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
Go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. I put this picture, this person's face, full frame on television tonight. Put his picture up, full frame on television tonight. Let the people of the country see his face tonight.
Social media ka rehte Pakistan mein hai, lekin Oxford aur Harvard ki baat karenge. Are zameen par aa jaiye na. Zameen par aa jaiye. 500 rupaye ke daan maange aapke प्रधानमंत्री जमीन पर आज
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक और ये है पॉलिटिकल वार। मैं लेकर आ रहा हूं एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जो जुड़ा है भारत से। रखिएगा भारत की बात और भारत की राजनीति पर उसका असर। हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे तथ्य और उनके जवाब जो बनाएगा भारत को और भी बेहतर। वेलकम टू पॉलिटिकल वार।
नमस्कार भारत, स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वार में। और आज हम लोग जुड़ चुके हैं हमारे नए एपिसोड के साथ। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मातृभाषा को लेकर के। अभी कुछ ही दिनों पहले 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस था और मातृभाषा दिवस के बाद आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार भारत के अंदर ही क्यों इतनी ज्यादा भाषाओं के प्रति या भाषाओं को लेकर के जागरूकता नहीं है, या फिर भाषाएं भारत के अंदर मर क्यों रही हैं। और इसी बातचीत में आज हमारे बीच जुड़े हैं फ्रीलांसर ट्रांसलेटर जिन्होंने गूगल, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, और ऑलिव बोर्ड के चीफ एडिटर, चीफ ट्रांसलेटर सुलेख गोपाल जी। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है दी पॉलिटिकल वार में।
बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक कि हम लोग एक बहुत ही क्या कहें कि ऐसा ज्वलंत विषय है जो रोज हमारे रोजाना की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और उसे हम यथासंभव प्रयास करते हैं कि वो इग्नोरेंस में ही जाता रहे, पर उस पर ध्यान दिलाने के लिए, उस पर ध्यान लाने के लिए तुमने प्रयास किया, इसके लिए बधाई के पात्र हो। और फिर आगे हम इस पर लगातार, क्योंकि मातृभाषा ऐसी चीज से हम रोजाना देखते हैं, रोजाना महसूस करते हैं पर फिर भी महसूस नहीं करते हैं, तो ये जो दुविधाएं हैं इसे सामने लाना जरूरी है।
मातृभाषा को भी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं तो मातृभाषा की अगर मैं बात करता हूं तो आपके हिसाब से मातृभाषा क्या है, अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन जानना चाहें हम लोग तो।
देखिए, मातृभाषा जो है वो आप अपने जन्म लेते समय अपने आसपास, क्योंकि आप जन्म लेते हैं एक परिवार में और उस परिवार का आपसी संवाद करने का एक कोई लहजा होता है, और वो लहजा जो है वो, क्योंकि जब भाषा हम कहते हैं तो परिभाषिक तौर पर भाषा अपने आप में मानी जाती है जिसकी लिपि हो, जिसका साहित्य हो, लेकिन जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो ये परिभाषा थोड़ी सी अपने आप में बदल जाती है। ऐसी दुनिया में अनेक अनेक बोलियां हैं जिनका ना तो कोई लिखित साहित्य है, ना लिखित इतिहास है, ना ही उनके अखबार छपते हैं, लेकिन वो अपने आप में स्वबोली है, वो आपस में एक परिवार एक समुदाय संवाद करता है और वो उस समुदाय या उस परिवार की मातृभाषा है। क्यों? क्योंकि मातृभाषा इसलिए कि जब वो पैदा हुआ तो उसने पहले शब्द उसी भाषा उसी संरचना के सुने, अपनी माँ से सुने होंगे, ये ऐसा मानकर हम चलते हैं क्योंकि पहला संवाद बच्चे का माँ से ही होता है। इसीलिए मातृभाषा वो भाषा जो उसने अपनी परिवार से, अपनी पृष्ठभूमि से सीखी है।
तो मातृभाषा को अगर मैं प्रॉपरली डिफाइन करूं तो बच्चे के बोले गए पहले शब्द जो उसके समाज से जुड़ते हैं, या फिर उसके समाज के आसपास जो उसकी भाषा आती है, उसकी बोली जो आती है, वो मातृभाषा, अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूं तो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम साधारण तौर पर समझे, क्योंकि बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि मातृभाषा को हमें बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाओं में बांधने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने जिस समाज में परिवेश में जन्म लिया उस परिवेश से जो उसने सीखा बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, बिना किसी साहित्यिक अवधारणाओं के, बिना किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के, स्वाभाविक तौर पर वो उसकी मातृभाषा होगी।
और अगर मैं बात करूं कि यूएन ने सिर्फ 21 फरवरी को ही क्यों चुना मातृभाषा दिवस के रूप में, तो इसका भी कोई मुख्य कारण है?
हाँ बिल्कुल, देखिए जब आप राजनीतिक, क्योंकि यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो वैश्विक संकल्पना का एक संघ है कि वो एक वैश्विक तस्वीर रखता है कि हम वैश्विक तौर पर जुड़े हुए मनुष्य जाति का एक समुदाय के तौर पर हम मनुष्य जाति कितने वृहद तौर पर जुड़े हुए हैं। तो देखिए बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी है और बांग्लादेश जो कि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था और हम सभी जानते हैं कि बंगाली भाषी जो कहा जाता था, हिंदी साहित्य का इतिहास भी जब आप देखते हैं तो कहा जाता है कि जो बंगाल आज करता था वो भारत कल करेगा। मतलब कि बंगाल एक प्रगतिशील समाज रहा है हमारे भारतीय संदर्भ में, एक प्रगतिशील तबका रहा है जिसने भारत को दिशा दी,
समृद्ध जगह भी रही है अगर हम बंगाल को देखते हैं।
हाँ,
पश्चिम पर हो लेकिन बंगाल की तरफ से हमने ये देखा कि साहित्य को लेकर के समृद्धि या फिर आर्थिक रूप से समृद्धि बहुत ज्यादा रही है बंगाल के अंदर।
हाँ, क्योंकि कृषिकालीन व्यवस्था में जब आप जाएंगे तो बंगाल की जो दोआब का क्षेत्र, क्योंकि वहां पर नदियां हैं, गंगा है और बाकी तमाम नदियां हैं, तो इसकी वजह से वहां का जो एक वातावरण है वो बहुत ज्यादा कृषि उपजाऊ वातावरण था, तो वो समृद्ध था।
वहां पर फिर ब्रह्मपुत्र आ जाती है, गंगा भी।
हाँ, पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा को, तो नदियां हैं बहुत सारी और इसकी वजह से वो उपजाऊ जमीन थी, तो मध्यकालीन समृद्धि का कारण था। खैर, पर आज का विषय जो है हमारा वो है कि मातृभाषा क्यों 21 फरवरी को मनाया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की भाषा नीति कितनी ज्यादा उपनिवेशवादी मानसिकता से थी, उन्होंने उर्दू को थोपा, जो उर्दू कहा जाए तो पाकिस्तान की भाषा भी नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान की राजभाषा है। और क्योंकि उर्दू थी भाषा हमारे लखनवी तहजीब और दिल्ली के आसपास के मुगल शासकों की भाषा थी, मुगल सामंतों की भाषा थी उर्दू, जिसे जब यहां का जो एक वर्ग गया, पाकिस्तान एक सत्ता वर्ग गया, तो उसने अपनी भाषा उर्दू को वहां का राजभाषा बनवा दिया, जबकि पश्तो सिंधी वहां की स्थानीय भाषाएं हैं, जो वहां के लोग
वहां की भाषा थी,
पंजाबी, सिंधी पश्तो, हाँ बलूची, तो लेकिन उन्होंने उर्दू चुना। अब बांग्ला भाषी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बांग्ला भाषी अपनी भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहे हैं, तो 1951 के समय में ऐसा हुआ कि ये आंदोलन जब अपने चरम पर हुआ तो वहां पर सत्ता की हिंसा से 5 छात्रों का निधन हुआ। मतलब सत्ता ने हिंसा की कि आप उर्दू के खिलाफ क्यों आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे में 5 छात्रों का निधन हुआ। और उनकी याद में बांग्लादेश ने तब से यह तय किया कि 21 फरवरी 1952 को यह कांड हुआ था, तब से बांग्लादेश ने यह तय किया कि हम अपनी मातृभाषा को स्मरण में अपने मातृभाषा दिवस मनाएंगे। और कालांतर में जब 1971 में वो एक देश बना तो उन्होंने उनके जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने प्रयास किया और यूएन में एक संकल्प पारित किया, और जिससे ये तय हुआ सन 2000 से कि अब पूरे विश्व में मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए, मातृभाषाओं के बढ़ावा देने के लिए यूएनओ अपने स्तर पर, विश्व स्तर पर बनाया जाएगा एक मातृभाषा दिवस, जो कि 21 फरवरी तय हुआ उन्हीं युवकों की याद में जिन्होंने बांग्ला भाषी जनता के लिए बांग्ला भाषा को सर्वोच्च मानते हुए आंदोलन शुरू किया था।
हाँ, जिसके बाद फिर लिंग्विस्टिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश भी बना, फिर बाद में वो जाकर के इस्लामी के रिपब्लिक,
वो सारी चीजें हुई बाद में,
भाषा एक राजनीतिक जन्म लेने वाला पहला देश था वो।
हाँ, भाषा के आधार पर अगर आप कहें उपनिवेशी देशों में भाषा के आधार पर फ्रांस का निर्माण हुआ है, भाषा के आधार पर जर्मनी है, पर ये सब देश जो है वो राजतंत्र के क्या कहें, एक तरह से उत्तराधिकारी थे। पर बांग्लादेश एक ऐसा एकमात्र राष्ट्र है जिसने उपनिवेशी तंत्र से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भाषा के आधार पर, एक भाषा के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण किया।
मतलब कि अगर हम कहें तो ये विडंबना ही है इस सब कॉन्टिनेंट की, जिस जहां पर इतना बड़ा भाषा को लेकर के आंदोलन हुआ लेकिन यहीं पर की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा खराब है।
हाँ, ये आयरनी है हमारे देश की कि देखिए नेपाल, जैसे वेद प्रकाश वैदिक जी का लेख भी आया है 21 फरवरी के उपलक्ष में, तो उन्होंने उसमें यही जिक्र किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा विद्वान पत्रकार हैं, तो उन्होंने यही कहा कि नेपाल, भूटान और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान है, ये बशर्ते जीडीपी के स्तर पर या स्थायित्व के स्तर पर हमसे पीछे हों, पर भाषा के प्रयोग के स्तर पर वो हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। उन्होंने अपनी भाषाओं को स्वीकार किया है, अपनी भाषाओं को अपने राजतंत्र में स्थान दिया है, अपनी भाषाओं में ही बहस करते हैं, अपनी भाषाओं को सर्वोच्च मानते हैं। पर वहीं उन्होंने फिर चार इन देशों का उदाहरण भी दिया, श्रीलंका, मालदीव, भारत और पाकिस्तान, जो कि एक विदेशी भाषा के आधार पर अपनी संसदीय कार्यवाही करते हैं, एक विदेशी भाषा के आधार पर अपनी वैधानिक कार्यवाही करते हैं, एक विदेशी भाषा के आधार पर अपने शिक्षा तंत्र को चलाते हैं। तो ये विडंबना देखिए कि अफगानिस्तान जो राजनीतिक तौर पर अस्थिर है वो अपनी भाषा के महत्व को समझता है, नेपाल जो भारत से कहीं गुना छोटा देश है वो अपनी भाषा विविधता को समझता है, स्वीकार करता है, उसका आदर करता है, भूटान जिसने दुनिया को एक अलग दिशा दे दी है कि वो ग्रॉस हैप्पी इंडेक्स लेके आया है, वो मनुष्य को खुश देखना चाहता है, तो ये मॉडल जो है बताते हैं कि भारत जहां पर 1700 से अधिक बोलियां हैं, जहां पर हमने 23 भाषाओं को तो अपने संविधान में अनुसूचित किया है, ऐसे स्थान पर हमारी जो संरचना है वो ऐसी बन गई है कि हम अपनी मैथिली जो हम अपनी मातृभाषा है, चाहे वो मैथिली हो, मगही हो, भोजपुरी हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, और दक्षिण भारत में चले जाइए कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम हो, इन सबको साइड में करके हमने अंग्रेजी का वर्चस्व स्वीकार कर लिया है। ये हमारी विडंबना है। हमारी विडंबना ये नहीं है कि हमने तमाम भाषाओं को प्रयोग में क्यों नहीं लाया, हमारी विडंबना ये है कि हमने अंग्रेजी को सबका सब्स्टिट्यूट बना दिया,
हमने जबकि होना ये जब हमारे पास ऑलरेडी के रूप में पहले से ही भाषा थी और वो ऐसी
हमारे पास
अपनी भाषा है,
हमारे पास अपनी भाषाओं का एक समृद्ध इतिहास है। भारत के साथ अच्छी बात यह है कि अगर अफगानिस्तान और नेपाल के पास ये दुविधा भी थी कि उनके पास समृद्ध इतिहास में कटौती थी या वो कटे हुए थे विश्व से, पर भारत के साथ ये अच्छी बात रही है कि वो विश्व से कटे हुए ना होने के बावजूद, विश्व के साथ सम्मिलित होने के बावजूद भी अपने आप में भाषाई समृद्धि और भाषाई मौलिकता को बचाए रखी थी, क्योंकि हमारे राजतंत्रों में कवि गण का समुदाय था जो अपनी भाषाओं में साहित्य रचता था। मलयालम भाषा में चले जाइए, एकदम उच्च कोटि का साहित्य है। अब तमिल में चले जाइए, उच्च कोटि का साहित्य है। उत्तर भारत में हिंदी भाषाओं को देखिए, हिंदी भाषा के आपसी साहित्य में ही मैथिली, अवधि, ब्रज, उड़िया, राजस्थानी, ये तमाम विविधताएं, बुंदेलखंडी, ये तमाम विविधताओं के साथ अपना साहित्य लेके आते हैं। हिंदी को अपने इतिहास में झांकना पड़ता है कि वो मैथिली की कभी विद्यापति को नहीं छोड़ सकता है, अगर वो छोड़ देगा तो उसका इतिहास अधूरा रह जाएगा। वो बांग्ला कवि को नहीं छोड़ सकता है, वो राजस्थानी चारण को नहीं छोड़ सकता है। तो ये समृद्धि हमें समझनी चाहिए थी, पर हमने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया।
दूसरी तरफ अगर मैं भारत की तरफ ही आता हूँ, भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार भाषा को लेकर के आपसी सहमति नहीं है, ये चीज हमने बहुत बार नोटिस करी है, खासकर साउथ में देखते हैं। तो साउथ में भी ऐसी सारी भाषाएं हैं जो हिंदी को एक विकल्प के रूप में नहीं देखते हैं, हिंदी भाषी लोग जो हैं वो बाकी भाषा को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मेन इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोगों के ऊपर?
इसमें हार्दिक दो चीजें हैं। देखियो, बात यह है कि दक्षिण भारतीय आम जनता जो है वो आम जनता का मन जो है वो उसी तरह से है जैसे एक बिहार की आम जनता का है, उसे भी अंग्रेजी से उतनी ही तकलीफ होती है जितनी तकलीफ एक बिहार के युवक को होती है, उतनी ही तकलीफ एक तमिलनाडु बोलने वाले तमिल बोलने वाले व्यक्ति को भी होती है। पर यहाँ पे विमर्श की बात यह आती है कि तमिल जनता के जो प्रतिनिधि हैं जो राजनीति कर रहे हैं या जो भारतीय जनता के राजनीतिज्ञ हैं, उनके सत्ता संचालन कैसा है? उनका सत्ता संचालन है अंग्रेजी, क्योंकि वो अंग्रेजीदार लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, इसीलिए वो संपर्क भाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी से आम जनता, मेरे तमिलनाडु के दोस्त हैं उनको हिंदी समझ में आती है और वो टूटी फूटी हिंदी बोल भी लेते हैं, उन्होंने हिंदी का कोई परंपरागत शिक्षण नहीं किया है पर वो ऐसी हिंदी बोल लेते हैं कि वो उत्तर भारतीय से साथ संपर्क कर सके। हाँ, उनका तमिलनाडु के जनता का जो ये प्रश्न है कि उत्तर भारतीय लोग तमिल क्यों नहीं सीखते हैं, ये भी उत्तर भारतीयों को समझना चाहिए कि वो अपने भाषाई विविधता को लेकर के उन्मुक्त हों और उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीयों से उनकी भाषाओं में बात करने की कोशिश करनी चाहिए। पर व्यवहारिकता के स्तर पर हम मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु सब नहीं सिखा सकते हैं एक व्यक्ति को, पर हम व्यवहारिकता के स्तर पर हिंदी सभी को सिखा सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक संपर्क भाषा है। मैं यहाँ पर तीन चीजें स्पष्ट कर दूं राजनीतिक परिभाषा में, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा, तीनों अलग अलग संकल्पनाएं हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है और नहीं होगी, इसके लिए हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए उत्तर भारतीयों को भी कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, पर हिंदी एक संपर्क भाषा है। ये दक्षिण भारतीयों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदी भारत की एक संपर्क भाषा है जिसके माध्यम से भारत संवाद कर सकता है, चाहे वो मैथिली भाषी हो, चाहे वो बंगाली भाषी हो, चाहे वो राजस्थानी भाषी हो, गुजराती हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, उसे हिंदी समझ में आ जाती है क्योंकि हिंदी की शब्दावलियां तमाम भाषाओं के आधार पर निर्मित की गई है। हिंदी एक कृत्रिम भाषा है जिसका निर्माण किया गया है
एक तरीके से, मिली भाषा।
हाँ, तो दक्षिण भारतीय राजनेताओं को ये राजनेता अपने बच्चों को क्यों सिखाते हैं? आप देखिए उनके उनके सामाजिक जब आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो उनके सामाजिक सरोकार यही कहते हैं कि राजनेता अपने अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, पर आम जनता के लिए वो आंदोलन करते हैं कि नहीं, आम जनता को हिंदी नहीं सीखनी चाहिए। इससे अब विकास किसका अवरुद्ध होता है? अगर मान लीजिए मैं स्पेनिश सीखने से मना कर दूं तो मैं स्पेनिश जनता से कट जाऊंगा।
बिल्कुल।
तो भाषा सीखना अपने आप में एक अलग चीज है और भाषाई विमर्श बनाना अलग। आप तमिलनाडु को तमिल को बढ़ावा दीजिए, पर आप अंग्रेजी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? प्रश्न, मूल प्रश्न ये है भारत के संदर्भ में। आप कहिए मैं तमिल में संवाद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब कहते हैं कि नहीं हम हिंदी में संवाद नहीं करेंगे, अंग्रेजी में संवाद करेंगे, तो उपनिवेश की मानसिकता, यहाँ राजनीतिक डिस्कोर्स को समझना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। वो आम जनता को, वो उत्तर भारतीयों को, दक्षिण भारतीयों को एक ऐसी भाषा में संवाद करने के लिए कह रहा है जो उनकी भाषा है ही नहीं
ना। वो उनकी अपनी भाषा है, वो तो बाहर से आई है, बल्कि
वो बाहर से आई है।
तो डिस्कोर्स समझने में मैं बात करूं इसी प्रश्न में, अगर थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा, आप क्योंकि ट्रांसलेशन वाले इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, आप ट्रांसलेटर हैं, आपने नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी के साथ कार्य किया है, तो आपने क्या देखा है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो भाषा को लेकर के क्या डिस्कोर्स है, क्या कारण है कि कॉर्पोरेट जगत में भी नई नई भाषा इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, वो भी इंग्लिश के ऊपर ज्यादा निर्भर हो रखे हैं?
नहीं, जो एक्चुअली इसमें दो चीजें हैं हार्दिक, वही बात है कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, जैसे मान लो कि मेरी ट्रेनिंग पूरी की पूरी में जो मेरा प्रशिक्षण है वो अंग्रेजी में हुआ हो, तो मुझसे देशी भाषाओं के प्रति जो ज्ञान है या जो प्रशिक्षण चाहिए कि उस भाषाओं में काम करने की, वो काबिलियत मेरे अंदर नहीं होगी क्योंकि मेरा प्रशिक्षण अंग्रेजी भाषा में हुआ है। तो जो शिक्षण व्यवस्था है, क्योंकि पश्चिमी देशों के प्रति हम इतने ज्यादा आग्रही हैं कि हम जैसे ही थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीखते हैं तो हम जंप कर जाते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि अंग्रेजी भाषा यदि हमने नहीं सीखी तो हम पिछड़ जाएंगे, जो कि एक हद तक वैश्विक परिपेक्ष में सही भी है कि आपको सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, पर कॉर्पोरेट मातृभाषाओं में भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं आ रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स का एक उदाहरण दें तो वो अंग्रेजी की भाषा, अंग्रेजी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद करवाता है, जर्मन फिल्मों का हिंदी में अनुवाद करवाता है, वो फ्रांसीसी फिल्मों का अनुवाद करवाता है, पर भारतीय जनता जो
मांग होगी तो अपने आप कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबल होगा, ये बात अगर
हाँ, कॉर्पोरेट का काम है बाजार, व्यापार करना। अगर उसको मान लो गोपाल को कोई वस्तु बेचनी है और गोपाल ने आग्रह किया है कि नहीं मुझे तो सिर्फ मैथिली में ही चाहिए, तो वो गोपाल के लिए मैथिली में उपलब्ध करवाएगा, पर अगर गोपाल खुद जंप कर लेगा कि नहीं इंग्लिश कंफर्टेबल है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए ताकि मैं नेटफ्लिक्स देख सकूं, तो क्या जरूरत है बाजार को इन्वेस्ट करने की? उसके लिए तो कस्टमर अपने आप इस इन्वेस्ट कर रहा है अपने ऊपर, अंग्रेजी सीखने में अतिरिक्त प्रयास करवा रहा है, पर वही बाजार अगर
तो, हाँ, वही है, फिर क्यों करेगा वो अपनी मेहनत क्यों करेगा, उसको तो, हाँ, तो मार्केट मिल रहा है आराम से। मतलब कि
तो हमें
पर अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा गलती हमारी ही है कि हम लोग उसकी मांग नहीं करते, वरना कॉर्पोरेट देने को तैयार,
हम डिमांड करेंगे कॉर्पोरेट देने को। आप देखिए ना, आप फोन पे खोलिए, आप अमेजोन खोलिए, आप जितनी भी बड़ी कंपनियों के एप्स खोलिए जो डेली यूज के ऐप है, उनमें आप देखिए, आप भाषाओं का विकल्प देखिए, वो भारतीय भाषाओं में विकल्प दे रहे हैं, खास करके तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी में जरूर विकल्प देते हैं, मराठी, बंगाली में विकल्प देते हैं।
तो अगर हम देखते हैं कि कार्टून के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो कार्टून था वो सिर्फ हिंदी के अनुवाद में आता था, बाद में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और अब तो बांग्ला भाषा में भी आने लग गया है, और गुजराती भी आ चुकी है, मराठी भी आ चुकी है उसमें, तो कार्टून का डबिंग भी अब उसमें हो रहा है। तो मतलब यही है कि इन शॉर्ट मांग है जो मेन कारण है, अगर जब तक मांग नहीं होगी उस चीज की तब तक हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। सेम गोज फॉर
लैंग्वेज, ये सजग होना पड़ेगा, हमें और आपको सजग होना पड़ेगा राजनीतिक तौर पर, अपनी ग्लानी बोध को निकालना पड़ेगा। आपको ये निकालना पड़ेगा कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ये जो मानसिकता है कि अंग्रेजी को आपने बुद्धिमत्ता से चस्पा कर दिया है कि अंग्रेजी बोलने वाला बुद्धिमान ही होगा, ये मानसिकता निकालनी पड़ेगी। एक हिंदी का वक्ता, एक उड़िया का वक्ता, एक तमिल वक्ता बहुत ही ज्ञानवान बातें कर सकता है तमिल भाषा में, उर्दू भाषा में या फिर उड़िया भाषा में, और आपको उसी सजगता से अगर आप उसी गर्व के साथ वो भाषा बोलते हैं तो आपकी भाषा नहीं बढ़ती है, बल्कि उस उन लोगों के अंदर मनोबल आता है कि देखिए हमें अपनी भाषाओं में भी बात करनी है। अब जैसे ये तमाम बातें हैं कि राजनीति की बातें, 18वीं शताब्दी में माना जाता था जब अंग्रेज थे कि हिंदी में तो संभव ही नहीं है कोई चीज, पर आज हमने इस स्थिति में ला दिया है हिंदी को कि हिंदी में ज्ञान विज्ञान तर्क मनोविज्ञान फिलोसफी सब की बातें होती हैं और सशक्त रूप से होती हैं। उसी तरह से मातृभाषाओं में भी ये सब संभव है। एक जर्मन भाषी इंजीनियरिंग अगर जर्मन भाषा में पढ़ सकता है तो एक भोजपुरी भाषी क्यों नहीं पढ़ सकता है, भोजपुरी में ये क्षमता क्यों नहीं है? बिल्कुल है, पर हमने मान कर चल लिया है क्योंकि हमारे पास काम चलाओ भाषा है अंग्रेजी, तो हम चलो ठीक है, मुट्ठी भर जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनका काम चल जा रहा है। न्यायालय में भोजपुरी में क्यों नहीं हो सकता है, जो दो वकील भोजपुरी में क्यों नहीं आपस में संवाद कर सकते हैं, क्या उससे कानून की परिभाषाएं बदल जाएंगी? मूल भाव तो भोजपुरी में वही रहेगा जो हमारे संविधान ने लिख दिया है, पर हमारे अंदर मानसिकता आ गई है कि एक वकील को अंग्रेजी में ही बहस करनी चाहिए, भले ही जिसके लिए वो बहस कर रहा है उसे वो समझ में आए या ना आए।
दूसरी चीज भैया, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि हम दोनों एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर भाषा तो है, भाषा जिंदा भी है, लेकिन भाषा के अंदर अश्लीलता भी बहुत है, वो हमने अभी कुछ ही हाल ही के दिनों में देख लिया है। मैं भाषा का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम लोग ये जानते हैं, शायद मेरे दर्शकों को भी आइडिया लग गया होगा कि हम किस भाषा की बात कर रहे हैं। वैसा ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं, वो जो अश्लीलता है भाषा के अंदर, स्पेशली मातृभाषा को लेकर के, अगर बाकी भाषाओं को भी देखें तो उनके अंदर भी है, लेकिन इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं उस क्षेत्र में इतनी ज्यादा ये अश्लीलता है क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है और क्यों इसको लेकर के आवाज नहीं उठती?
देखिए दो चीजें हैं इसमें भी कि आप जब अश्लीलता की बात करते हैं मातृभाषाओं में या फिर जो हमारी देसी भाषाएं हैं उनमें, तो एक पहली बात तो ये कि हमें अश्लीलता ज्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि हमें अपनी भाषा समझ में ज्यादा आती है, और जब क्योंकि समझ में ज्यादा आती है तो हम उसे ज्यादा अधिक स्तर पर एक तरह से कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा इस भाषा में इतनी ज्यादा अश्लीलता है। बल्कि जब आप आइटम सॉन्ग सुनेंगे अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी का ज्ञान अगर आपको होगा तो अंग्रेजी में भी उसी स्तर का दो संवादी अर्थ वाले गीत, दो संवादी अर्थ वाले संवाद लिखे जाते हैं, पर क्योंकि अंग्रेजी की उतनी वृहद समझ आपको नहीं है जो आप समझ पाए, तो आपको अपनी भाषा में अश्लीलता ज्यादा लगती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये होता भी है कि अश्लीलता होती है कुछ भाषाओं में बाजार में अपने आपको बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि जब उदाहरण के लिए आप कहते हैं संस्कृत, तो संस्कृत बोलने वाले जो वर्ग है वो एक ट्रेडिशनली मान लिया गया है कि चलो वो पंडित वर्ग है, मंत्र पढ़ता है, पर जबकि संस्कृत साहित्य इतना बृहद साहित्य है जिसमें खगोल विज्ञान, भविष्य पुराण और पता नहीं ना जाने कौन कौन से साहित्य, हाँ
बड़ा मैथमेटिक्स बोला जाता है दुनिया में,
मैथमेटिक्स सबकी बातें हैं, पर प्रचलन है कि नहीं संस्कृत बोलने वाले तो चलो यही होती, यही बस पंडिताई करते होंगे, ये गलत है। उसी तरह से जब किसी भाषा का आर्थिक सर्वेक्षण आप करेंगे, उस भाषा को बोलने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, तो क्या उस भाषा को बोलने, अब जैसे अंग्रेजी भाषी जो है वो मंगल का संदर्भ समझेंगे क्योंकि अंग्रेजी भाषा में मंगल यान को जाने पर जो योजनाएं और जो न्यूज है वो आ रही है, पर एक मान लीजिए उड़िया भाषा कि जो साहित्य बोलने वाले लोग हैं या मैथिली भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं, जो वर्ग है, वो यदि अभी अपनी रोजमर्रा के जीवन की जरूरतों को पूरा करने में ही संघर्ष कर रहा है तो उसकी भाषा में वही परोसा जाएगा बाजारवाद के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनका वर्ग जो है उसकी मानसिक स्थिति इस स्तर पर नहीं आई है कि वो उन विमर्शों को समझ सके। पर ऐसा नहीं कि विमर्श नहीं चल रहा है, एक छोटे से वर्ग में विमर्श चल रहा है, इनको नकारा जाता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए भाषा में। और जहां तक बात रही अश्लीलता की, तो इसको आपको ये भी समझना पड़ेगा कि गालियां अश्लीलता भाषाओं का अभिन्न अंग है, उनको हमें किस रूप में कैसे प्रस्तुत करना है इस पर नियंत्रण होना चाहिए, इस पर एक बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। पर इस पर हम ये चर्चा नहीं कर सकते कि ये भाषा ज्यादा अश्लील और ये भाषा कम अश्लील है। भाषाएं सभी अश्लील है, सभी भाषाओं में शालीनता भी है, पर वो बोलने वाला वर्ग किन चीजों को हाईलाइट करता है और हमें क्या चीजें समझ में आती है इस पर निर्भर करती है हमारी मानसिकता। यदि एक गाना अंग्रेजी का मैं आपको सुनाऊं जिसमें डबल मीनिंग बातें हैं, तो वो डबल मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अंग्रेजी का संदर्भ आपको नहीं पता है, तो आपको लगेगा इसमें डबल मीनिंग नहीं है। पर क्योंकि हिंदी का संदर्भ आपको पता है तो आप कनेक्ट कर लेंगे, अच्छा हिंदी में तो गलत बात कर दी इन्होंने। तो ये दो चीजें हैं, होती हो रही है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं नकार रहा हूं कि नहीं हो रही है, गलत बातें हो रही है भाषा में, पर उस भाषा का स्तर जो हम एक मतलब ये एक षड्यंत्र है राजनीतिक तौर पर कि उन भाषाओं को दोयम दर्जा दिखाया जाए कि ये भाषाएं अच्छी बातें करने लायक है ही नहीं, जैसे अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हिंदी में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, पर हुआ ना। आज हमने साबित किया 70 सालों के इतिहास में, हमने भाषा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया, हमने अपने शब्दकोश बनाए, हमने तमाम विषयों को परिभाषित किया है हिंदी में। आज हिंदी की स्थिति यह है कि उसमें ऐसा कोई विषय नहीं जिसे परिभाषित ना किया जा सकता हो। यही स्थिति हमें अपनी छोटी भाषाएं जो कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं उनके लिए भी मानसिकता बनानी पड़ेगी। आज उनमें अश्लीलता है क्योंकि उनके बोलने वालों में गर्व नहीं है, उनके बोलने वालों में विमर्श नहीं है, तो उस विमर्श को हम बोल के लाएंगे ना। हमारा काम है कि युवा वर्ग, फिर ये नहीं कि हम अमेरिका के पिछलग्गू बन जाएं कि चलो हमें अमेरिकन सॉन्ग ही सुनने, हम अपनी भाषा सुने, हम निर्माण करें ना अच्छे गीतों का, हम उसको सुधार दें, हम नकारना शुरू कर दें कि ये नहीं, ये गीत नहीं चलेगा, तो बाजार अपने आप ही अच्छे गीतों पर आ जाएगा।
और युवा वर्गों में भी कुछ इस प्रकार का मतलब है थोड़ा बहुत कि जो अंग्रेजी गाने सुनता है वो अपने आप को कूल समझता है, जो अंग्रेजी बोल सकता है वो डूड है, कूल है, लेकिन वही जो अपनी मातृभाषा बोल रहा है, जो अपनी मातृभाषा में वाद विवाद करता है, बातें करता है, अपने समाज से जुड़ने का प्रयास करता है, वो गवार हो जाता है। ये भारत के अंदर हमने देखा है कि वो गवार बन गया है, उससे तो बात नहीं करनी।
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको हार्दिक, इससे जुड़ा हुआ है, आपसे आपने जो चीज कही उसी से जुड़ा हुआ है कि मैं अधिकांश अपने पोस्ट हिंदी में लिखता हूँ, और क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे अंग्रेजी से तो रूबरू होना ही पड़ता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ हमेशा से, और हमेशा मैं अपने प्रोफेशनल स्पेस में कहता भी हूँ कि मैं अंग्रेजी के साथ आरामदायक महसूस नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं अंग्रेजी प्रयोग नहीं करता हूँ, और इसे कहने मुझे कोई हिचक नहीं होती है, भले ही मैं अनुवादक हूँ, ट्रांसलेटर हूँ, क्योंकि मैं जब अंग्रेजी में कोई अभिव्यक्ति करूंगा तो पहले मैं हिंदी में उसे सोचूंगा, मैं मैथिली में उसे सोचूंगा, और तब अंग्रेजी में अनुवाद करके लिखूंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने सीधे से मैथिली भाषा में लिख दूं, मैं अपने हिंदी भाषा में लिख दूं। तो ये चीज सबके अंदर आनी चाहिए कि आप भाषाएं सीखिए, भाषाओं को सीखना मना मत करिए, आप अंग्रेजी सीखिए, स्पेनिश, लेकिन सिर्फ यहाँ पर भी ये बात, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं बस, आप स्पेनिश जनता तो अंग्रेजी सीख नहीं बोलती है, उसके संस्कृति से आप रूबरू नहीं है, जर्मन से आप रूबरू नहीं है, फ्रेंच से आप रूबरू नहीं है, चाइनीज से आप रूबरू नहीं है, जापानीज से आप रूबरू नहीं है। तो ज्ञान विज्ञान का सारा ठेका जो आपने अंग्रेजी को दे दिया है, ये मानसिकता से बाहर निकलिए, ज्ञान विज्ञान का सारा ठेका अंग्रेजी के पास नहीं है, आप बहुत बड़ी दुनिया से कटे हुए हैं अंग्रेजी बोलने के बावजूद। तो आपको भाषाओं के प्रति उन्मुक्त होना चाहिए, अनुवाद के प्रति, इसलिए अनुवादकों की जरूरत दुनिया को है, और अनुवादकों को ये समझना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के लिए आपने अश्लीलता वाला बात बोली, तो जैसे मैथिली में मान लीजिए मैं लिखूं, तो मैथिली में हम क्या करते हैं, ज्यादातर गीत संगीत की बात करते हैं, अपने साहित्यिक परंपरा की बात करके खत्म कर देते हैं। पर हमें करना ये चाहिए कि चाणक्य का चिंतन या अरस्तु का चिंतन हमें मैथिली में उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि मैथिली भाषा समृद्ध हो। हमें इलोन मस्क के द्वारा किया गया काम को, वो मंगल ग्रह पे यंत्र भेज रहा है, उसे मैथिली में उपलब्ध करवाना चाहिए। ये काम किसका, ये अनुवादकों और भाषा वैज्ञानिकों का है। वो करते क्या है, वो अंग्रेजी में पढ़ के छोड़ देते हैं कि अंग्रेजी क्या, मैथिली जनता को अगर मैथिली में वो साहित्य उपलब्ध होगा, प्राथमिक शिक्षा मैथिली में दी जाएगी, तो उसे समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए भाषा बोलने वाले लोगों को काम करना पड़ेगा कि वो भाषा को गीत संगीत से इतर सोचना शुरू करें, कि भाषा का वास्तविक विकास ऐसे होगा कि हम सिर्फ अपने साहित्यिक परंपरा की बात ना करें, हम अपने चिंतन की बात भी करें अपनी भाषा में।
बिल्कुल भैया, तो खैर इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड का समापन करते हैं। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच जुड़ने के लिए, और इतने अचानक समय पे मैंने आपको फोन किया, और आपने अपना समय दिया दी पॉलिटिकल वायर को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि हम दोनों एक ही मंच से जुड़े हुए हैं, मैथिली आकांक्षा मंच, जहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं कि अपनी मातृभाषा के लिए थोड़े से प्रयास करें, वो जो हमारा आंदोलन चल रहा है, जहाँ पर हम लोग हमारे युवा वर्गों के अंदर चाहते हैं कि हम लोग अपनी भाषा को लेकर के सजग हो और जो भाषा है उससे जुड़ाव महसूस करें, जिसमें हमारी छोटी सी थोड़ी थोड़ी आहुति जा रही है वो बरकरार रहे, हम लोग इसी प्रकार आगे भी वार्ता करते रहें। भैया सबसे पहले तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक स्थिति होती है जब आप, वो पल होता है जिस पल में आप किसी एक व्यक्ति के अंदर भी अगर चेतना जागृत कर देते, जैसे तुमने मैथिली मंच का कहा, तो उसका आइडिया ऑफ इनोवेशन यही है कि यदि गोपाल बिहार से कटा हुआ था 20 साल तक, तो उसे एहसास हो कि बिहार की जो उसकी मिट्टी है, उसकी जो मातृभाषा है वो मैथिली है, और वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की अंग्रेजी है, और उसका महत्व बिल्कुल भी कम नहीं है किसी भी लहजे से। और यही भाव एक उड़िया बोलने वाले में, यही भाव एक जर्मन बोलने वाले में, यही भाव मतलब हमारे भारतीय भाषाओं के बोलने वाले में आए कि यदि एक जर्मन व्यक्ति का दायित्व या जर्मन व्यक्ति की अभिव्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, तो एक मैथिली व्यक्ति की अभिव्यक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हमारी मातृभाषाओं का यूएनए ने ये भी इसीलिए शुरू किया बांग्लादेश के संदर्भ में कि हाँ, मातृभाषाएं महत्वपूर्ण हैं और मातृभाषाओं को समझा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
थोड़ा सा कि यहाँ पे हम लोग, अगर मैं थोड़ी सी और छोटी सी बात करूंगा कि इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस भी भारत में बहुत ज्यादा हो रही है, अगर हम बात करें तो वो एक लैंग्वेज जो डेटा बुक है उसमें लैंग्वेजेस में भारत की कम से कम 200 से ऊपर लैंग्वेजेस भी हैं। तो हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि वो जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज में हमारी भाषाएं लिखी हुई है ना, उनको थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास करें और उसको लेकर के भी जागरूक रहें। कुमाऊनी गढ़वाली जैसी भाषाएं अगर वहां पर जा रही है, अंगिका जैसी भाषाएं वहां पर जा रही है, जिनका साहित्य भी थोड़ा सा मैच्योर साहित्य हम बोल सकते हैं, अगर वो भाषाएं जा रही है तो फिर भारत के लिए गलत है ये बात। तो
बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक, अब यही बात है ना, मैं मैथिली भाषी हूँ ये मुझे बाद में पता लगे तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी।
मेरे पास मेरी विडंबना तो भैया ये थी कि मैं अपनी भाषा को भोजपुरी और बांग्ला का मिक्सचर समझता था, लेकिन बाद में मेरी तो मातृभाषा मैथिली है और उसका भी डायलेक्ट लैंग्वेज अंगिका है, ये जाकर मुझे अभी कुछ सालों में पता लगा है, वरना तो मैं भाषा
अंगिका है, वज्जिका है, अपनी जो बोली जाती
है, मैथिली है, अंगिका है, भोजपुरी है,
भोजपुरी है, ये तमाम एक क्षेत्र की भाषाएं हैं जो आपस में गुमफित हैं और अपना व्यक्तिगत एक तरह से अस्तित्व भी रखती हैं साथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक, इस तरह की बातें ना केवल मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि निश्चित तौर पर जो भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे उनको भी सोचने पर मजबूर करेंगे, और उनके सवाल इस तरह से संवाद बना रहना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग के बीच अगर चेतना नहीं आएगी ना, तो भाषाओं का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जो लोग हमसे पहले आए थे उन्होंने अपना जीवन जी लिया, अब हमें निर्धारित करना है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा, तो इसलिए हमें सोचना जरूरी है।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके आशीष शब्दों के लिए, और एक छोटा सा संदेश दी पॉलिटिकल वार के लिए, के लिए भी।
बिल्कुल, देखिए राजनीति, भले ही आप ये मानकर चले कि राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं है, पर राजनीति से आप हमेशा घिरे हुए हैं, उनके विमर्शों से आप संचालित हो रहे हैं, और उन्हें समझने के लिए जिस तरह का ये ब्लॉग कहे या पॉडकास्ट कहे, ये अगर हार्दिक तुम्हारे जैसे बच्चे या फिर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन जैसे लोग इस चेतना को लेकर के सजग होकर के प्रश्न करते हैं, तो ये ना केवल सुनने वालों के लिए अच्छा है बल्कि सोचने वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इनसे क्या होता है कि संवाद बना रहता है। अगर हो सकता है कि मैंने ऐसी बातें कही हो जिनसे आप इत्तेफाक ना रखते हो, या हार्दिक ने ऐसी बातें कही हो जिनसे इत्तेफाक आप ना रखते हो, पर आप उन इत्तेफाक ना रखने का कारण जब ढूंढते हैं तो वहां पर ऐसे पॉडकास्ट की जरूरत पड़ती है जहां ये सवाल आते हैं, जहां इनके जवाब आते हैं, आप संवाद करते हैं। तो जुड़े रहिए पॉडकास्ट से और इसके माध्यम से अपने संवाद को भी भेजते रहिए, आपके मन में जो सवाल आए वो हार्दिक को भेजिए ताकि हार्दिक उन पर सोचे और फिर वो और लोगों से संवाद करे, तो इससे क्या होगा कि एक चेतना बनेगी, आपकी अच्छी चेतना बनेगी, हमारी अच्छी चेतना बनेगी, और सवालों के जवाब आएंगे, हमारे सामने स्पष्ट तस्वीरें होंगी। तो आप सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए यही संदेश कि संवाद को केवल सुन के छोड़ मत दीजिए, उस पर चिंतन करिए। जैसे हार्दिक के मन में सवाल आए तो उन्होंने चिंतन किया और पूछे, और उसको आप एक चैन बना लीजिए कि आपके मन में भी सवाल आए तो पूछिए, और उसके बाद पॉडकास्ट पे तो हार्दिक आपके लिए उपलब्ध करवाएगा ही।
बिल्कुल भैया, और मेरा हमेशा से प्रयास यही रहता है कि मैं अपने दर्शकों को द बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करूं और उनको जागरूक करूं कि भाई क्यों ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और क्यों आप इससे जुड़े हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम लोग फेसबुक पे अवेलेबल हैं द पॉलिटिकल वार के नाम से, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @thepoliticalwir, और इंस्टाग्राम पे तो आप लोग जानते ही हैं कि ThePoliticalWire के साथ हम लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वहाँ पे जुड़े रहिएगा और अपने प्रश्नों को हम तक भेज दिएगा, हम लोग उस पर भी विचार करेंगे।